हेडिंग, अडंबरा के बाद लंदन, अडंबरा के बाद लंदन। रिवर साइड के आर्टिस्ट डायरेक्टर डेविड गोथार्ड थे। ब्रूक का इंटरव्यू पढ़ने के बाद डेविड इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि हिंदुस्तान से नया थिएटर को ही बुलाया जाए। कुछ महीने पहले केनिथ रिया का भी एक मजमून कोष्ठक में लेख एक थिएटर मैगजीन में छपा, जिसमें उन्होंने हमारे नाटकों का प्रशंसा के साथ जिक्र किया था। उसका असर भी लंदन थिएटर की दुनिया पर पड़ा था। केनिथ रिया लंदन के थिएटर स्कूल में शिक्षक थे, खुद नाटक भी लिखते हैं और अपने नाटकों का निर्देशन भी करते हैं और आमतौर से थिएटर के बारे में समीक्षा भी लिखते रहते हैं। वह एक साल पहले महीने दो महीने के लिए हिंदुस्तान आए हुए थे और सारे मुल्क का सफ़र किया था। चंद हफ्ते दिल्ली में भी गुजारे थे। दिल्ली के ज़माने में वह हमसे कई दिनों तक मिलते रहे, हमारे नाटकों के रिहर्सल देखते रहे और मुझसे बातें करते रहे। इस मुशाहिदे कोष्ठक में पर्यवेक्षण और सफ़र के इस तजुर्बे के बारे में लंदन वापस पहुंचकर उन्होंने अपना ये लेख लिखा, जिसमें और नाटकों के अलावा चरण दास चोर का भी बयान छपा था। पैराग्राफ चेंज। डेविड गोर्थार्ड पर इन दोनों के लेखों का असर पड़ा था और उन तस्वीरों का भी जो उन्होंने हमसे मंगाई थी। चुनांच डेविड ने हिंदुस्तान के सरकारी फैसलों को न मानते हुए चरण दास चोर की ही मांग की और नया थिएटर को निमंत्रण भेज दिया। सरकारी एंट्री के मुताबिक NSD का नाटक फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए आया, जिसका एडिनबरा ड्रामा फेस्टिवल से कोई संबंध न था। चुनांच उसे लंदन कॉमनवेल्थ थिएटर में जगह दी गई, वह चलाया गया फिर उखड़ गया। 5-100 के खुले थिएटर में हर रोज 30-40 दर्शक जाते थे। चुनांच उस शो के बारे में लंदन के अखबारों ने कुछ लिखा भी नहीं। मैं ये बात क्यों लिख रहा होऊंगा, उसकी एक वजह तो ये है कि जिसे एलिटिस्ट थिएटर कहते हैं और जिसमें नकल का पहलू होता है, उसका मैं कभी कायल नहीं रहा। इंग्लैंड से सीखी हुई चीज़ इंग्लैंड में क्यों अलकाजी ने भी इंग्लिस्तान से थिएटर की तालीम हासिल की, मैंने भी। उनकी जबान यों भी अंग्रेजी ही थी, हिंदी सीखी हुई थी, जिस पर उन्होंने इतनी महारत नहीं थी जितनी कि अंग्रेजी पर। उनके नाटकों में उसी तालीम की झलक हमेशा नज़र आती रही और मैं मुद्दतों पहले यकीन की हद तक इस नतीजे पर पहुंच गया कि थिएटर में अगर किसी पेज 24 और कल्चर की नकल की झलक है तो वह असली थिएटर नहीं है। थिएटर को अपने मुल्क, अपने समाज की जिंदगी, अपने मुल्क की शैली में कुछ इस तरह पेश करना चाहिए कि बाहर के लोग देखकर यह कह सके कि ये भी एक थिएटर है। थिएटर के सारे लवाजमात तत्व उसमें मौजूद हैं, हमें उसमें वही मज़ा आता है जो थिएटर में आना चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसा थिएटर खुद करना चाहे तो नहीं कर सकेंगे, यानी थिएटर में इलाकायत कोष्ठक में आंचलिकता का दामन न छोड़ते हुए विश्व स्तर पर पहुंचना कामयाब थिएटर की कुंजी है। आज ऐसे थिएटर हमारे मुल्क में कम सही मगर हैं जरूर। पैराग्राफ चेंज। इस बात को पहले कभी न कहने की वजह यह है कि हमने ही हम पेशा हम मसरब लोगों के बारे में ऐसी सच्ची बातें कहने में झिझक महसूस होती है, इसलिए कि आमतौर से हमारे कुछ आर्टिस्ट किसी भी प्रकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं करते, फिर उससे गलतफहमियां पैदा होने की भी संभावना पैदा होती है। अब इस उम्र में आकर ये बात कहना मुझे इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि इस लेख से नौजवानों को वह सीख मिले जो मैं देना चाहता हूँ, जिस पर मुझे गहरा यकीन है। बस बहरहाल, जब हमें पुरस्कार मिल गया तो वही सरकार जिसने पहले हमारा विरोध किया था तारीफें करने लगी। प्रधानमंत्री ने मुबारकबाद का तार भेजा। इंडियन हाई कमिश्नर ने सारे कलाकारों को एम्बेसी में हाई टी पर बुलाया, तरह तरह के पकवान खिलाए और अनपढ़ ग्रामीण कलाकारों की तारीफों के पुल बांध दिए। मेरा कलेजा खुशी और गौरव से फूल गया कि जिन देहातियों की आमतौर से अपने मुल्क में कोई कदर नहीं होती, आज उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कलाम का सिक्का बैठा दिया। एडिनबरा अंतर्राष्ट्रीय नाट्य उत्सव से प्रथम फ्रिंज पुरस्कार की पब्लिसिटी लिए हम लंदन रिवर साइड स्टूडियो पहुँचे। पहले ही शो में लंदन के सारे बड़े अखबारों के आलोचक मौजूद थे। डेविड ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा, उन पब्लिसिटी वाली लड़कियों ने कमाल कर दिया हबीब, आज उन्हीं की वजह से तुम्हारा शो देखने सारे क्रिटिक जमा है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। शो के बाद जेन मेरे पास दौड़ी हुई आई और कहा, हबीब फौरन चलो मेरे साथ। माइकल बैलिंगटन लंदन ऑब्जर्वर के आलोचक दफ्तर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, जरा लिबास बदल लूँ। कहने लगी, ऐसे ही चलो, उन्होंने आज ही समीक्षा लिखना है। माइकल बैलिंगटन थिएटर के दफ्तर में मेरा इंतजार कर रहे थे। मेकअप उतारे बगैर राज पुरोहित के लिबास में खड़ा हूँ, हाथ में लिए नंगे पांव उनके साथ हो लिया। पेज 25। रास्ते में जेन बताती रही कि लंदन में आज बड़े बड़े नाटकों के प्रीमियम हुए। कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई भी बड़ा आलोचक आज हमारा नाटक देखने आएगा। सब यही कहते रहे, दो एक दिन बाद हम जरूर आ जाएंगे, अभी नहीं। बड़ी मुश्किल से हमने राजी किया। मुझे खुशी हुई कि दूसरे सारे प्रीमियम छोड़कर लंदन के सारे बड़े समीक्षक आज शो देखने आए। कल सुबह लंदन के सब प्रमुख अखबार चरण द थीफ के रिव्यू से भर जाएंगे। यही हुआ। इरविंग वार्डल ने टाइम में, माइकल बैलिंगटन ने ऑब्जर्वर में नाटक को उछाल दिया। रिवर साइड स्टूडियो में 2 हफ्ते के प्रदर्शनों में हर रोज थिएटर छकाछक भरा रहता। इक्का दुक्का हिंदुस्तानी दोस्त बीबीसी के कभी कभार आ जाते, वरना आमतौर से सब दर्शक अंग्रेज। मैं शुरू में 2-3 मिनट बोलता, चोर के 5 प्रण बता देता कि इन्हीं पर नाटक आधारित है। मुश्किल से 3 शो हुए होंगे कि एक दिन डेविड गोथार्ड ने मुझसे कहा, हबीब लोग नाटक समझ रहे हैं। छपे प्रोग्राम में गानों का भी और सीन ब सीन कथासार का भी अनुवाद उनके हाथों में है, चाहे उसे मध्यांतर में पढ़े चाहे घर जाकर इंतमाम से देखे। बहरहाल, तुम्हारा कुछ बोलना अनावश्यक है, बस आज से सीधे नाटक दिखाओ। हेडिंग, विजयदान को चोर नापसंद था। विजयदान को चोर नापसंद था। 1987 में बस्तर और राजस्थान के कलाकारों को सोवियत यूनियन ले जाने से पहले दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में 3 दिनों का रिहर्सल तय हुआ था। लांगा और मंघायन यार ग्रुप के साथ कोमल कोठरी और विजयदान देथा दिल्ली तक आए थे और लान पर मेरे साथ बैठे रिहर्सल देख रहे थे। मैंने बहुत पहले से सुन रखा था कि बिज्जी को मेरा चरणदास चोर का प्रोडक्शन पसंद नहीं है। इसके अलावा उन्हें एक और शिकायत थी कि कभी उन्हें नाटक के शो में कोई रॉयल्टी नहीं मिली। मैंने मौका गनीमत जानकर चुपचाप 10,000 का एक चेक विजयदान के नाम लिखकर उनकी तरफ बढ़ा दिया, यह कहते हुए कि चरणदास चोर के शो मुद्दत से बराबर चल रहे हैं। आज तक मुझे तौफीक नहीं हुई कि मैं कुछ रियल्टी आपकी खिदमत में पेश करता। बस आज से हकीर कोष्ठक में मामूली रकम पेश करने का मौका मिला है, जो वैसे कम है, लेकिन आप इसे कबूल कर लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बिज्जी ने चेक के लिए बगैर खामोशी से अपनी नज़र कोमल की तरफ घुमा ली। कोमल दा बोले, भाई मोहब्बत से दे रहे हैं, ले लो। और बिज्जी ने चेक उसी खामोशी से स्वीकार कर लिया। पेज 26। फिर मैं बोला कि सुना है आपको मेरी प्रस्तुति पसंद नहीं। विजयदान बड़े लेखक होने के अलावा इंसान की हैसियत से मुझे बहुत पसंद थे। सच्चे, ईमानदार, बेशक शरीफ और वजादार आदमी हैं। मेरे दिल में उनके लिए हमेशा इज्जत का जज्बा रहा है। वह बोले, तुमने कहानी का अंत खराब कर दिया। कहानी में मैं ये बताना चाहता हूँ कि रानी बुराई और अत्याचार की प्रतीक है। वह झूठ बोलकर मरवा देने के बाद गुरु से शादी की योजना पेश करती है और गुरु स्वीकार करता है और उसके साथ शादी कर लेता है। यानी बुराई, अत्याचार, झूठ, कपट और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता बल्कि जारी रहता है, जिससे जूझने और जिसे खत्म करने की आवश्यकता बाकी रहती है। तुमने चोर की मृत्यु पर नाटक खत्म करके एक रोमांच पैदा कर दिया। यही नहीं, तुमने चोर को पूजा के योग्य एक आइकन बनाकर दर्शकों को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया। मुझे इस बात पर आपत्ति है। जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे दिल में विजय दान देता की बहुत इज्जत है। चुनांच मैं ज़्यादा बहस न करते हुए सिर्फ ये कहकर टाल गया कि आप अपनी दृष्टि के अनुसार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन नाटक के अंत के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा। मुझे चोर के उसी अंत में नाटकीयता नजर आई और जब दर्शकों ने उसे कबूल कर लिया तो दूसरे सब रास्ते मेरे लिए बंद हो गए। पैराग्राफ चेंज। विजय दान दरअसल अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन मेरी मजबूरी अपनी जगह थी। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मुझे रानी के किरदार में अत्याचार का पहलू कम और राजनीतिक पहलू ज़्यादा नज़र आता है। एक जवान औरत और वह भी एक रानी एक मामूली चोर से मोहब्बत का इजहार करे और वह इनकार कर दे, भला एक औरत के लिए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? वह चाहती तो उसी एक बात पर कत्ल का हुक्म दे सकती थी, लेकिन उसने अपनी ये हतक बर्दाश्त कर ली और उसके पैरों पर लौटते हुए एक आखिरी विनती की कि जो बातें उसकी ख्वाबगाह कोष्ठक में शयन कक्ष में हुई हैं, चरणदास बाहर जाकर उसके बारे में किसी से कुछ न कहे। उस पर चरणदास ने ये कहता है कि उसने सच बोलने का प्रण लिया है तो रानी आपे से बाहर हो जाती हैं। ऐसी बदनामी राज सिंहासन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे आदमी का मुंह बंद कर देना जरूरी है। उसे कत्ल करवा देने के अलावा रानी के पास कोई दूसरा चारा न था। चुनांच उसने यही किया। पैराग्राफ चेंज। एक दोस्त ने मुझसे ये भी कहा कि चोर के मरने के बाद नाटक को खत्म हो जाना चाहिए। पेज 27। उसके बाद कहानी लटक जाती है। मैंने कहा कि नाटक की इस्तलाह कोष्ठक में शब्दावली में एक चीज एंटी क्लाइमैक्स भी है। मौत का धचका दे देने के बाद जरूरी है कि इस अंत का पूरा महत्व तो लोगों तक पहुंचाया जाए। एंटी क्लाइमैक्स यही काम करता है। शेक्सपियर के नाटकों में चाहे मैकबेथ हो, चाहे हेमलेट, चाहे ओथेलो, चाहे लियर, नायक के मर जाने के बाद खासा लंबा एंटी क्लाइमैक्स जरूर रहता है। यही हाल यूनान के शास्त्रीय नाटकों का है। मेरे नज़दीक नाटक का विषय यही था कि सच्चाई का दामन पकड़े रहना जान जोखिम में डालना है। अगर यही हश्र सुकरात का हुआ, ईसा मसीह का हुआ, महात्मा गांधी का हुआ और फिर एक मामूली चोर का भी यही अंजाम हुआ तो उसका दर्जा किसी महापुरुष से कम नहीं है। सितंबर 2004, भोपाल, हबीब तनवीर।